好的。
आज है 29 नवंबर 65 का पैसे क्लास।
ओम शांति। Today it is the morning class of the 29th November 1965.
Record chala hai.
The record played is.
Tumhe paake humne jahan pa liya. Jami ko jami, aasma pa liya.
Meaning, having found you, we have received the world. Not only the earth, but also the sky.
Kisi paake pa liya hai. और क्या पा लिया
है? Having found whom have we received it and what have we received?
तुम्हें माने किसे?
तुम्हें meaning you means whom?
बिंदु को.
The point.
जो बिंदु सुप्रीम सोल है वो तो सदाकाल है ही है. जैसे हमारी आत्माएं सदाकाल है ही है.
The Supreme Soul, the point is anyway present forever, just like our soul is present forever.
पाने और ना पाने की बात ही नहीं.
There is no question at all of finding it or not finding it.
लेकिन वो Supreme Soul जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है.
However, when that Supreme Soul is revealed in this world,
और ये बात हम समझ लेते हैं बुद्धि से.
And when we understand through the intellect,
ये वो निराकार सुप्रीम सोल शिव कोई साकार मुकर्रर मनुष्य तन के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष हुआ है.
That the incorporeal supreme soul Shiva has been revealed in this world through some physical permanent human body.
हमारी बुद्धि में बैठ जाता है.
When it sits in our intellect,
और ऐसे तन के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ है.
That he is revealed through such a body.
जिस तन की धारण करने वाली आत्मा सारी मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी.
The soul that bears the body is the hero actor of the entire human world.
जब ये बुद्धि में बैठ जाता है कि सारी मनुष्य सृष्टि का बीज पिता परमात्मा हमको प्राप्त हो चुका.
When it sits in the intellect that we have received the seed of the entire human world, the father, the supreme soul,
जिसके लिए हम 63 जन्म से भटकते आए.
For whom we have been wandering for 63 births.
तीर्थों में ठिकानों में माथा टेकते आए.
We have been bowing our head in pilgrimage places and many places of worship.
और कहीं भी मिला नहीं.
And we didn't find him anywhere.
वो हमें प्राप्त हो चुका है.
When we come to know that we have received him,
जिस बीज के पाने से सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जैसे हमारी बुद्धि रूपी मुट्ठी में आ जाता
है. By receiving that seed, it is as if the entire tree-like human world comes in our feast-like intellect.
बीज को पा लिया तो बीज में सारा झाड़ तो समाया ही हुआ है.
If we have received the seed, the entire tree is contained in the seed anyway.
तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी ऐसे बेहद के बाप से हमको वर्षा मिल रहा है.
So, the sweet children know we are receiving the inheritance from such an unlimited father now.
बेहद का बाप का वर्षा भी बेहद का होता है.
The inheritance of the unlimited father is also unlimited.
हद के बाप से हद का अल्पकाल का वर्षा मिलता है.
The inheritance received from the limited father is limited, temporary.
लाख करोड़ अरब 10 अरब का वर्षा मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा.
From him, we will receive the inheritance of 100,000s, millions or billions at the most.
और बाप हेल्दी होगा तो बच्चा भी हेल्दी बन जाएगा.
If the father is healthy, the child will also become healthy.
लेकिन वो हेल्थ और वेल्थ सदा काल की नहीं हो सकती।
बट दैट हेल्थ एंड वेल्थ कांट लास्ट फॉर एवर।
एक जन्म के लिए भी पूरी पड़े या न पड़े,
इट इज नॉट श्योर वेदर इट विल सफाइस इवन फॉर वन बर्थ और नॉट।
लेकिन जो बेहद का मनुष्य शक्ति का बाप है, उसके द्वारा सुप्रीम सोल शिव आकर के जो हमको सुख शांति का अखंड वर्षा देता है, वो वर्षा अविनाशी
है। हाउएवर द अनलिमिटेड फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस दैट द सुप्रीम सोल शिव गिव्स अस थ्रू हिम इज इम्पेरिशेबल।
एक जन्म का नहीं है,
इट इज नॉट द इनहेरिटेंस ऑफ वन बर्थ।
हम चाहे तो उसकी श्रीमत पर चल करके पूरा पुरुषार्थ करके अनेक जन्मों का सुख शांति का वर्षा ले सकते।
इफ वी विश we can receive the inheritance of happiness and peace for many births by following his Srimad and making complete purusharth, meaning spiritual effort.
Usse jo sukh ka varsha milta hai use shastron mein jeevan mukti gayi hui.
The inheritance of happiness that is received from him is praised in the scriptures as the liberation in life, jeevan mukti.
Aur jo shanti ka varsha milta hai use mukti kehte.
And the inheritance of peace that is received is called liberation, mukti.
तो वो आकर के हमको ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का बेहद का वर्षा देता है।
So he comes and gives us this unlimited inheritance of liberation and liberation in life.
ये बहुत समझने की बातें हैं।
These are the topics to understand very well.
कहावत है परमपिता परमात्मा धर्म स्थापकों को भेज देते।
There is a saying, the supreme father, supreme soul sends the religious founders.
अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए।
To establish their respective religions.
तो वो धर्म पिता आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं।
So those religious fathers come and establish their religion.
परंतु ऐसे नहीं कि वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आदि आकर के कोई हमको बेहद का वर्षा दे देते।
हाउएवर इट इज नॉट दैट दोज इब्राहिम बुद्धा क्राइस्ट गुरु नानक एंड सो ऑन कम एंड गिव अस द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस।
नहीं, उनसे बेहद के वर्षे की बात ही नहीं निकलती।
नो, द क्वेश्चन ऑफ रिसीविंग द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस फ्रॉम देम डजंट अराइज एट ऑल।
वास्तव में शक्ति को सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है।
एक्चुअली देर इज ओनली वन फादर हु गिव्स द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस टू दिस वर्ल्ड।
क्राइस्ट की आत्मा सभी का बाप छोड़े ही है।
द सोल ऑफ क्राइस्ट इज नॉट द फादर ऑफ एवरीवन।
जो सारी मनुष्य शक्ति को वर्षा देगी।
सो दैट ही वुड गिव द इनहेरिटेंस टू द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड।
सिर्फ क्रिश्चियंस लोग उनको अपना बाप मानते हैं।
Only the Christians consider him to be their father.
तो बेहद का बाप तो नहीं हुआ।
So he is certainly not the unlimited father.
भले आज इस मनुष्य शक्ति में 100 करोड़ से भी ऊपर क्रिश्चियंस हैं।
Although today in this human world there are more than 1 billion Christians.
लेकिन दुनिया की आबादी तो 500-700 करोड़ है।
The population of the world is 5-7 billion.
तो सारी दुनिया तो उनको अपना बाप नहीं मानती।
So not the entire world considers him to be their father.
वो बेहद का बाप है।
That one is the unlimited father.
जिसको क्राइस्ट भी गॉड फादर के नाम से जानता था।
Whom even Christ knew with the name of God the Father.
जो भी धर्म पिताए हैं वो सब उसे मानते हैं।
All the religious fathers believe in him.
तो क्राइस्ट भी क्रिश्चियंस का बाप है।
वेल, क्राइस्ट इज नो डाउट द फादर ऑफ द क्रिश्चियंस।
तो भला वो क्रिश्चियंस को कौन सा वर्षा देते हैं?
सो व्हाट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस डज ही गिव टू द क्रिश्चियंस?
प्रश्न तो उठता है ना।
द क्वेश्चन डज अराइज, डजंट इट?
और वो वर्षा किसको देंगे?
एंड टू हुम विल ही गिव द इनहेरिटेंस?
वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने के लिए आते।
He comes only to establish his religion.
धर्म की धारणाएं स्थापन करते हैं और चले जाते हैं.
He establishes the religious precepts, धारणाएं and goes away.
उनके पीछे दूसरे दूसरे क्रिश्चियंस आते रहते हैं.
Other Christians keep coming after him.
दूसरे धर्म की आत्माएं भी आती रहती हैं.
The souls of other religions also keep coming.
धर्म पिताएं आते हैं, वो अपने अपने धर्म स्थापन करते हैं.
The religious fathers come and establish their respective religion.
सुख शांति का वर्षा तो कोई नहीं देते. दुनिया तो नीचे गिरती चली जाती है.
No one gives the inheritance of happiness and peace at all. The world keeps falling.
दुनिया में दुख और अशांति बढ़ती चली जाती है.
Sorrow and restlessness keeps increasing in the world.
तो सुख शांति के वर्षे की बात ही नहीं.
So, there is no question of receiving the inheritance of happiness and peace at all.
बाप से वर्षा लेना होता है.
You have to receive the inheritance from the father.
समझो समझो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए, उन्होंने क्या किया?
For example, Abraham, Buddha, Christ came. What did they do?
किसी को वर्षा दिया? नहीं.
Did they give the inheritance to anyone? No.
ये वर्षा देना बाप का काम है.
It is the father's task to give the inheritance.
वो तो खुद आते हैं.
He comes on his own.
आत्माएं आती है जाती है.
The souls come and go.
शरीर छोड़ के चली जाती है, पता नहीं चलता कहाँ चली गई.
They leave their body and go. No one comes to know where they went.
शक्ति वृद्धि को पाती रहती है.
The world keeps expanding.
इससे साबित होता है कि वो आत्माएं कहीं वापस नहीं चली जाती, इसी दुनिया में जन्म लेती रहती है और नीचे गिरती रहती है.
This proves that those souls don't go back to the supreme abode. They are born in this very world and keep falling.
तो वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है.
So the inheritance is always received from the creator.
क्रिएटर कहा जाता है बाप को.
The father is called the creator.
और क्रिएशन रचना कहा जाता है बच्चों को.
And the children are called the creation, रचना.
क्रिएटर एक है.
देर इज वन क्रिएटर.
लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप.
वन इज द लौकिक वर्ल्डली फादर एंड द अदर इज द पारलौकिक फादर. पारलौकिक मीनिंग बियॉन्ड द वर्ल्ड.
लौकिक बाप से एक जन्म का अल्पकाल का वर्षा मिलता है.
फ्रॉम द लौकिक फादर वी रिसीव द टेम्पररी इनहेरिटेंस फॉर वन बर्थ.
पारलौकिक बाप से अनेक जन्मों का अविनाशी वर्षा मिलता है.
फ्रॉम द पारलौकिक फादर वी रिसीव द इम्पेरिशेबल इनहेरिटेंस फॉर मेनी बर्थ्स.
ये बड़ी समझने धारण करने की बातें हैं.
दीज आर द टॉपिक्स टू बी अंडरस्टूड एंड असिमिलेटेड वेरी वेल.
धारणा भी उनको होगी जो औरों को दान करते रहेंगे.
द वंस हु कीप मेकिंग डोनेशंस टू द अदर्स विल असिमिलेट देम.
ज्ञान रत्नों का दान, गुण रत्नों का दान जो दूसरों को करते रहेंगे.
द वंस हु कीप मेकिंग द डोनेशन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ नॉलेज एंड द ज्वेल्स ऑफ वर्च्यूज टू द अदर्स.
तो उनका अपना ज्ञान अपने गुण स्वतः ही बढ़ते रहेंगे.
देयर ओन नॉलेज एंड वर्च्यूज विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली.
जो ईश्वर का ज्ञान लेकर दूसरों को नहीं देता.
द वन हु रिसीव्स गॉड्स नॉलेज बट डजंट गिव इट टू द अदर्स.
उसका अपना ज्ञान भी नहीं बढ़ सकता.
हिज ओन नॉलेज कांट इंक्रीज ईदर.
कहते भी है धन दिए धन ना फूटे.
इट इज ऑल्सो सेड वेल्थ इज नॉट फिनिश्ड बाय डोनेटिंग इट.
वो स्थूल धन तो लुटा दो तो लुट जाता है, खत्म हो जाता है.
स्पेंड दैट फिजिकल वेल्थ एंड इट इज स्पेंट फिनिश्ड.
और ये ज्ञान धन जो ईश्वर से मिलता है वो कभी देने से कूटता नहीं है.
एंड दिस वेल्थ ऑफ नॉलेज दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम गॉड इज नेवर फिनिश्ड बाय डोनेटिंग इट.
अभी बेहद का बाप सभी बच्चों को वर्षा देने आया है.
Now the unlimited father has come to give the inheritance to all the children.
वेद का बाप ही बच्चों को वेद का वर्षा देते हैं.
The unlimited father himself gives the unlimited inheritance to the children.
Christians, Islam, both the are sabhi ka baap hai.
There is just one father of everyone, the Christians, the people of Islam, the Buddhists and so on.
Aur sabhi kehte hain God father.
And everyone says God the Father.
Christ ne bhi kaha hai God father.
Christ also said God the Father.
Father ko koi kab bhulte nahi hai.
No one ever forgets the Father.
Aur God father ek hi nirakar ko kaha jata hai.
And only the incorporeal one is called God the Father.
Ek hi ka kya matlab?
What does only one, ek hi mean?
Aur nirakar ka kya matlab?
And what does the incorporeal one mean?
Nirakar samajhte hai jo in aankhon se dekhne mein nahi aata.
They think the incorporeal one means the one who isn't visible to these eyes.
To hamari aatma bhi to nirakar hai.
So our soul is also incorporeal.
Hamari jyoti bindu atma jiski roshni in aankhon se nikalti hai. Wo in aankhon se dekhne mein to nahi aati.
Our soul, a point of light, whose light comes out of these eyes, is certainly not visible to these eyes.
Wo bhi to nirakar hai.
It is also incorporeal.
Jiski yaadgar mein prakruti ke madhya mein bindi lagate hain.
They apply a bindi, that is dot, in the Bhrikuti as its memorial. Bhrikuti, meaning the place between the eyebrows.
Purush log tika lagate hain.
Men apply a tika, meaning vermilion mark.
Iska matlab ki wo jyoti bindu, chamakti hui atma, sitara, Bhrikuti ke madhya mein tika hua hai.
It means that point of light, the shining soul, the star is fixed in the Bhrikuti.
Jiski yaad mein tika lagate.
They apply the tika as its memorial.
Sabhi nirakar atmano ka baap ek hi hai.
There is only the one father of all the incorporeal souls.
Bindu bindu atma hai. Unka baap bhi bindu.
The souls are points. Their father is also a point.
Saap lamba hoga. To saap ka baap bhi lamba hoga.
A snake is long, so the father of the snake will also be long.
Kitaan chota hoga, to kitaan ka baap bhi chota hoga.
A germ is small, so the father of the germ will also be small.
Haathi mota taaja hoga, to uska baap bhi mota taaja hoga.
An elephant is fat and sturdy, so its father will also be fat and sturdy.
तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु सेवर वो भी ज्योति बिंदु है.
सो द फादर ऑफ द पॉइंट सोल्स शिव द पॉइंट ऑफ लाइट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट.
लेकिन वो ज्योति बिंदु गॉड फादर एक ही है और निराकार है.
बट देर इज ओनली वन गॉड द फादर द पॉइंट ऑफ लाइट एंड ही इज इनकॉर्पोरियल.
उसको याद करना है.
वी हैव टू रिमेम्बर हिम.
तो ये पेक्युलरिटी का पता कैसे चले.
सो हाउ विल वी रिकॉग्नाइज हिज पेक्युलरिटी.
कि वो एक ही कौन है.
हाउ विल वी रिकॉग्नाइज हु दैट ओनली वन इज.
क्योंकि आत्मा है तो सभी ज्योति बिंदु है.
इट इज बिकॉज ऑल द सोल्स आर पॉइंट्स ऑफ लाइट.
कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य देवताएं राक्षस सभी आत्मा ज्योति बिंदु है.
Insects, spiders, animals, birds, human beings, deities, demons, all the souls are points of light.
So, kaun se jyoti bindu ko yaad kare?
So, which point of light should we remember?
Kaun se nirakar ko yaad kare?
Which incorporeal one should we remember?
To nirakar jyoti bindu zarur is srishti par koi mein pravesh hota hai.
So, that incorporeal point of light certainly enters someone in this world.
Aur ek mein hi pravesh hokar sari srishti par pratyaksh hota hai.
And having entered only one being, he is revealed in the entire world.
Ek mukarrar rath mein aata hai.
He comes in one permanent chariot.
Wo sarvyapi hokar ke nahi aata hai.
He doesn't come being omnipresent.
Agar wo sarvyapi hokar ke aaye, हर आत्मा में वो परमात्मा प्रत्यक्ष होने लगे तो उसको कोई भी नहीं पहचान पाएगा।
इफ ही कम्स बींग ओमनी प्रेजेंट, इफ दैट सुप्रीम सोल इज रिवील्ड इन एवरी सोल, नो वन विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम।
तो सभी निराकार आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है।
सो गॉड द फादर अलोन इज द फादर ऑफ ऑल द इनकॉर्पोरियल सोल्स।
धर्म स्थापकों का भी वो निराकार एक बाप।
दैट इनकॉर्पोरियल वन इज द फादर ऑफ द रिलीजियस फाउंडर्स एज वेल।
और उनसे ही वर्षा मिलता है।
एंड द इनहेरिटेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम हिम अलोन।
सभी गॉड फादर कह के पुकारते हैं।
एवरी वन कॉल्स हिम गॉड द फादर।
एक भारतीय सिर्फ ऐसा कमबख्त है जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है।
भारत अलोन इज सो अनफॉर्चुनेट हु दैट इज द पॉपुलेशन सेज गॉड इज ओमनी प्रेजेंट।
ईश्वर को कण कण में कच्छ मच्छ जैसे जानवरों में व्यापक समझ लेते।
They consider God to be present in every particle, in animals like the turtle and the fish, kach mach.
अब ऐसा कमबख्त किसने बनाया?
Well, who made them so unfortunate?
जिन्होंने ये बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, खुद ही कमबख्त बने।
The ones who said that God is omnipresent themselves became unfortunate.
ईश्वर सर्वव्यापी है फिर ईश्वर को याद क्यों करते हो?
इफ गॉड इज ओमनी प्रेजेंट वाई डू दे रिमेम्बर गॉड?
सब में व्यापक है तो फिर सबको याद करें।
इफ ही इज प्रेजेंट इन एवरी वन दे शुड रिमेम्बर एवरी वन।
ईश्वर की फिर स्पेशल प्रतिमा बना करके क्यों रखते हैं?
वाई डू दे मेक एंड कीप अ स्पेशल आइडल ऑफ गॉड?
साधु लोग साधना किसकी करते हैं और प्रार्थना किसकी करते हैं?
Whose devotion do the ascetics perform and to whom do they pray?
बाप आएंगे तो ये बात पूछेंगे ना?
When the father comes, he will ask about these things, won't he?
Creator सबका एक है।
There is one creator of everyone.
देवताओं का भी creator एक है। मनुष्यों का भी creator एक है।
There is one creator of the deities as well as the human beings.
वो ही पतित पावन।
He himself is the purifier of the sinful.
Creator Avinashi ko nahi kaha jata.
Someone imperishable isn't called the creator.
Atma Avinashi. Atma ka baap jyoti bindu Paramatma Avinashi.
The soul is imperishable. The father of the souls, the supreme soul, point of light is imperishable.
Use create karne ki baat nahi.
There is no question of creating them.
क्योंकि आत्मा क्रिएट नहीं होती, आत्मा बनाई नहीं जाती।
Because a soul isn't created, a soul isn't made.
आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है।
In fact, the soul is unchanging, eternal and imperishable.
लेकिन आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे तो क्रिएटर कही जा सकती है।
But when the soul enters the body, it can be called creator.
अब देवताओं को क्रिएट किसने किया?
Well, who created the deities?
कलयुग के अंत में तो सारी मनुष्य शक्ति होती है।
At the end of the iron age, the entire human world exists.
सब भूल करने वाले मनुष्य हैं।
All are human beings who commit mistakes.
बिगड़े मनुष्य बनता है तो राक्षस कहा जाता है।
When the human being is spoiled, He is called demon.
उन मनुष्यों को राक्षस से देवता बनाने वाला परम पिता परमात्मा।
The supreme father, supreme soul is the one who makes those human beings from demons into deities. It is because everyone in the golden age is pure and true.
वहाँ झूठा कोई होता ही नहीं।
No one is false there at all.
फिर पतित कैसे बनते?
Then how do they become impure?
ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि पतित कैसे बनते।
It doesn't come in anyone's intellect how they become impure.
तुम बच्चों की बुद्धि में है कि रावण रूपी दुश्मन हमको पतित बनाते हैं।
it is in the intellect of you children that the enemy in the form of Ravan makes you impure.
लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में गए.
It has been written, the deities went to the left path, वाम मार्ग.
बायां हाथ और ये दायां हाथ.
The left hand and this is the right hand. Baba is demonstrating by showing his hands.
शुभ कौन सा माना जाता है?
Which one is considered to be auspicious?
दायां हाथ शुभ माना जाता है.
The right hand is considered to be auspicious.
और बायां हाथ अशुभ माना जाता है.
And the left hand is considered to be inauspicious.
दान धर्म कौन से हाथ से करते हैं?
With which hand do you perform the act of charity?
दाएं हाथ से दान धर्म किया जाता है, अच्छे कर्म किए जाते हैं.
The act of charity, the good actions are performed with the right hand.
बाएं हाथ से कचरा साफ किया जाता है.
Dirt is cleaned with the left hand.
तो बायां अशुभ है और दायां हाथ अशुभ है.
So the left hand is inauspicious and the right hand is auspicious.
माने देवताएं वाम मार्ग में गए, माने उल्टे मार्ग में चले गए.
This means the deities went to the left path, meaning the wrong path.
जिस मार्ग में नहीं जाना चाहिए, जो मार्ग श्रीमद् भगवत गीता के खिलाफ है, उस मार्ग में चले गए.
They went to the path on which they shouldn't have gone, the path which is opposite to that mentioned in the Srimad Bhagavad Gita.
Gita mein to likha hua hai, he Arjun, ye kaam mahashatru hai, tu isko tyag de.
It is certainly written in the Gita, O Arjun, this lust is your greatest enemy, renounce it.
लेकिन जब वाम मार्ग में गए तो पुस्तक ज्यों की ज्यों धरी रह जाती.
बट वेन दे वेंट टू द लेफ्ट पाथ द बुक वॉज केप्ट एज इट वॉज.
कोई भी काम विकार को त्यागने का पुरुषार्थ पूरा नहीं कर पाता.
नो वन इज एबल टू कम्प्लीट द पुरुषार्थ ऑफ रिनाउंसिंग द वाइस ऑफ लस्ट.
क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो निर्विकारी देवताएं विकारी कैसे बन गए.
बिकॉज नो वन नोज एट ऑल हाउ द डेटीज who were without vices became vicious.
वाम मार्ग में जाना माना पतित बन जाना.
To go to the left path means to become impure.
देवताएं पतित नहीं होती.
The deities weren't impure.
नीचे नहीं गिरते थे.
They didn't fall.
न तन की शक्ति से नीचे गिरते थे.
They didn't fall through the bodily power.
तन की शक्ति भी क्षीण नहीं होती थी. मन की शक्तियाँ भी क्षीण नहीं होती थी.
They didn't lose the power of the body. They didn't lose the power of the mind either.
तो तन और मन से कभी पतित नहीं बने. वो देवताएं आज पूजे जाते.
So those deities who never became impure through the body and mind are worshipped today.
मंदिरों में उनकी हम पूजा करते हैं.
We worship them in temples.
कौन पूजा करते हैं? जो पतित बनते हैं, वाम मार्ग में जाते हैं, उल्टा रास्ता पकड़ते हैं, वो मंदिर बना करके पूजा करते हैं.
Who worship them? The ones who become impure, who go to the left path, who choose the wrong path, build temples and worship them.
अब बाप आए हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे.
Now the father has come and he says, children, you yourselves were deities.
मैंने आकर के तुमको नर से नारायण बनाया था गीता ज्ञान देकर.
आई केम एंड मेड यू नारायण फ्रॉम अ मैन आफ्टर इम्पार्टिंग द नॉलेज ऑफ द गीता.
जैसे गीता में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, तू वह कर्म करे जो मैं बताता हूँ.
फॉर एग्जाम्पल इट इज रिटन इन द गीता, ओ अर्जुन परफॉर्म द डीड्स दैट आई टेल यू टू परफॉर्म.
मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति बताता हूँ.
आई टेल यू द डायनेमिक्स ऑफ कर्म अकर्म एंड विकर्म. कर्म मीन्स एक्शन, अकर्म मीन्स एक्शन विच डू नॉट हैव एनी कार्मिक रिटर्न, विकर्म मीन्स रॉन्ग एक्शन.
ये कर्म विकर्म की गति कोई नहीं बता सकता।
नो वन कैन एक्सप्लेन दिस डायनेमिक्स ऑफ कर्म एंड विकर्म।
अगर बताया होता तो दुनिया में कर्मों का सुधार हुआ होता, दुनिया नीचे नहीं गिरती।
Had they explained it, then there would have been improvement in the actions in the world. The world wouldn't have fallen.
मैं आकर के कर्म की उभरी गति बताता हूँ।
I come and tell you the deep dynamics of actions.
तो जो कर्म की उभरी गति समझते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते हैं, वो मनुष्य से देवता बनते हैं।
So the ones who understand the deep dynamics of actions, who assimilate the divine ishwariya knowledge, become deities from human beings.
To abhi ye pavan duniya ban rahi hai.
So this pure world is being created now.
Sari duniya ek saath pavan nahi ban sakti.
The entire world can't become pure altogether.
Aise ki nahi ki is duniya mein jo bhi 500-700 crore manushya hai, वो परमात्मा के आने मात्र से ही एकदम पावन देवताएं बन जा रहे हैं।
इट इज नॉट दैट ऑल द 5-7 billion ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड विल बिकम प्योर डेटीज एट वंस जस्ट बाय द अराइवल ऑफ द सुप्रीम सोल।
दुनिया का कोई भी धर्म स्थापन होता है तो उसमें टाइम लगता है।
इट टेक्स टाइम टू एस्टेब्लिश एनी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड।
कोई भी धर्म पिताएं आए 150 वर्ष का टाइम लगा तब धर्म की स्थापना होती।
इन द केस ऑफ एनी रिलीजियस फादर हु केम इट टुक 100-50 years अंटिल द रिलीजन वॉज एस्टेब्लिश्ड।
यहाँ तो परमात्मा बाप आकर के सिर्फ धर्म की स्थापना ही नहीं करते।
हियर द सुप्रीम सोल फादर कम्स एंड डजंट जस्ट एस्टेब्लिश द रिलीजन।
आज सनातन देवता धर्म की राजाई भी स्थापन करके जाते हैं।
But he also establishes the kingship of the ancient deity religion and departs.
Rajdhani sthapan karke jaate hain.
He departs after establishing the capital.
Aur itna hi nahi, jo purane dusht dharma chal rahe hain, dharma ke naam par aadambar ho chuke hain, un sab ka vinash karai dete hain.
And not only this, he brings about the destruction of all the old corrupt religions that are spread, that have turned ostentatious in the name of religion.
Dharma sansthapanarthay vinashaya cha duskritam. Sat dharma ki sthapana karta hun aur dusht dharmo ka vinash kar deta hun.
Dharma sansthapanarthaya vinashaya cha duskritam. That is, I establish the true religion and destroy the corrupt religions.
दुष्ट धारणाओं को मानने वाले कोई भी सृष्टि पर नहीं रहेंगे।
No one who believes in corrupt precepts will remain in this world.
द्वापर आर्य से पतित दुनिया शुरू होती है।
The impure world starts from the beginning of the copper age.
सतयुग और त्रेता जो रामकृष्ण की भूमि है, भारत में ही ये भूमि थी।
The golden and silver ages, which are the land of Ram and Krishna, this land was in Bharat itself.
वहाँ सब पुण्यात्माएं थी।
All were noble souls there.
शास्त्रों में तो मनुष्य ने, मनुष्य गुरुओं ने अगरम बगरम कर दिया।
Human beings, the human gurus have jumbled up everything in the scriptures.
एक तरफ कहते हैं सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवताएं थी।
On one side they say, in the golden age, there were deities complete with 16 celestial degrees.
Narayan ka raj tha.
There was the kingdom of Narayan.
Aur dusri taraf likh diya hai Hiranyakashyap ka raj tha.
And on the other side they have written, there was the kingdom of Hiranyakashyap, meaning a demon who claimed himself to be God.
Are dono baatein kaise siddhi hongi?
Are how will both these things prove to be true?
Ek taraf kehte hain Ram Rajya mein sab prakar ka sukh tha, कोई प्रकार का दुख नहीं था।
ऑन वन साइड दे से इन द किंगडम ऑफ राम देर वर ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, देर वॉज नो काइंड ऑफ सोरो।
दूसरी तरफ कह देते हैं राम की सीता चुराई गई।
ऑन द अदर साइड दे से राम सीता वॉज अबडक्टेड।
तो जो राम राजा उसकी सीता चुरा ली जाएगी, तो दूसरों का क्या ठिकाना रहेगा?
सो इफ सीता who belongs to King Ram himself is abducted, what will be the condition of the others?
ये सब अलग अलग बातें हो जाती
है. All these things are absurd.
वास्तव में सतयुग त्रेता वो भूमि है भारत की जहाँ कोई भी प्रकार का किसी को दुख नहीं होता.
Actually, the golden and silver ages are such a land of Bharat where no one has any kind of sorrow.
सुख शांति से संपन्न दो युग हैं.
They are the two ages, full of happiness and peace.
और उन युगों की स्थापना, उन युगों में धर्म का संचार परमात्मा बाप आकर की करते हैं.
And the Supreme Soul Father comes and establishes those ages. He spreads the concepts of religion in it.
जब दो युग पूरे होते हैं, तब तीसरा युग आता है द्वापर युग.
When these two ages end, the third age, the copper age comes.
Uska naam hi hai Dwapar, Dopur.
Its name itself is Dwapur, two cities.
Do do raj ho jate hain, do do dharm ho jate hain.
Two kingdoms appear, two religions come up.
Do do matein ho jati hain, do mein se char, char mein se aath.
Two systems of opinion appear. Then from two opinions, four appear. From four opinions, eight appear.
दुनिया में झगड़े पैदा होते रहते.
Quarrels start taking place in the world.
अनेक भाषाएं हो जाती हैं.
Various languages come up.
कलयुगांत में आते आते कलह क्लेश चरम सीमा को पहुंच जाता है.
Disputes and distress reach their extreme point till the arrival of the end of the Iron Age.
सारे धर्म पिताएं आकर के अपना करिश्मा दिखा के चले जाते.
ऑल द रिलीजियस फादर्स कम एंड गो अवे आफ्टर शोइंग देयर मिरेकल्स.
इस शक्ति पर कोई भी सुख शांति स्थापन नहीं कर पाता.
नो वन इज एबल टू एस्टेब्लिश हैप्पीनेस एंड पीस इन दिस वर्ल्ड.
सुख की दुनिया नहीं बना पाता.
नो वन इज एबल टू मेक इट इन टू द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस.
सब हाथ उठाए देते हैं.
एवरी वन लूजेज होप.
गांधी जी ने भारत में कितना प्रयास किया. राम राज्य लाएंगे.
गांधी जी स्ट्राइव्ड सो मच टू ब्रिंग द किंगडम ऑफ राम इन भारत.
शरीर छोड़ के चले गए.
ही लेफ्ट हिज बॉडी एंड वेंट अवे.
रिजल्ट क्या हुआ?
देन व्हाट वाज द रिजल्ट?
राम राज्य हुआ है और ही राम राज्य हो गया.
डिड इट बिकम द किंगडम ऑफ राम और डिड इट बिकम द किंगडम ऑफ रावण इवन मोर?
और ही रावण राज्य हो गया.
It became the kingdom of Ravan even more.
अभी बाप कहते हैं कि मैं आया हुआ.
Now the father says, I have come.
ये राम राज्य स्थापन करना निराकार और साकार राम का ही काम है.
The task of establishing the kingdom of Ram belongs only to the incorporeal and corporeal Ram.
ये कोई मनुष्य का काम नहीं है.
This is not a task of any human being.
अगर मनुष्यों का काम होता तो हिस्ट्री में 2500 वर्ष का खाता हमारे पास है.
Had it been a task of human beings, then we have the account of 2500 years of history.
मनुष्य शक्ति ऊपर उठी होती.
The human world would have risen high.
इसने सहानुभूति सहनशीलता मनुष्य में बढ़ी होती.
लव सिंपथी टॉलरेंस वुड हैव इंक्रीज्ड इन द ह्यूमन बीइंग्स.
लेकिन ये दिव्य गुण घटते गए या बढ़ते गए?
बट दीज डिवाइन वर्च्यूज केप्ट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग.
तो और ही घटते गए.
दे डिक्रीज्ड इवन मोर.
तो ये सारी दुनिया का पतन होता है द्वापर से जब दूसरे दूसरे धर्म पिताए आते.
सो The fall of this entire world takes place from the Copper Age, when the other religious fathers come
और दूसरे दूसरे धर्म स्थापन करते हैं
and establish other religions.
ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य कहा तो जाता है ना?
It is said the divine kingdom and the demonic kingdom, isn't it?
सत्य कहता है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य.
द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस are the kingdoms established by God.
और जहाँ पर कलयुग है आसुरों के द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य.
And the copper and iron ages are the kingdoms established by demons.
भारत की ही बात है.
It concerns भारत itself.
रावण को भारत में ही जलाते हैं.
रावण इज बर्न्ट ओनली इन भारत.
दूसरे देशों में रावण को नहीं जलाते. क्यों?
रावण इज नॉट बर्न्ट इन अदर कंट्रीज. व्हाई?
क्या भारत में रावण विदेश से आता है क्या?
डज रावण कम टू भारत फ्रॉम अब्रॉड?
ये रावण कहाँ का वासी है और राम कहाँ का वासी है?
वेयर डज दिस रावण रिसाइड एंड वेयर डज राम रिसाइड?
कहते राम अयोध्या का वासी है.
दे से राम इज अ रेजिडेंट ऑफ अयोध्या अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया.
आ माने नहीं, योद्धा माने युद्ध जहाँ नहीं होता.
अ मीन्स नॉट, योद्धा मीन्स वॉर, द प्लेस वेयर वॉर डजंट टेक प्लेस.
तो सतयुग त्रेता में कोई युद्ध नहीं होता जहाँ राम का राज्य.
सो इन द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस व्हेन इट वॉज द किंगडम ऑफ राम नो वॉर यूज टू टेक प्लेस.
जब द्वापर शुरू होता है, दुख शुरू होता है, तो भी रावण को नहीं जलाते.
इवन वेन द कॉपर एज बिगिन्स एंड सोरो स्टार्ट्स दे डोंट बर्न रावण.
क्योंकि द्वापर में फिर भी आठ कलाएं रहती
हैं. इट इज बिकॉज देर आर स्टिल एट सेलेस्टियल डिग्रीज इन द कॉपर एज.
लेकिन कलयुग कलाहीन हो जाता है.
बट द आयरन एज बिकम्स डिवॉइड ऑफ सेलेस्टियल डिग्रीज.
कोई गुण मनुष्य में नहीं रहते, सब अवगुणी हो जाते हैं.
No virtues remain in the human beings. Everyone becomes the one with bad traits.
तब रावण को जलाना शुरू करते.
Then they start to burn रावण.
दुनिया में भी देखा जाता है बड़े बड़े देवताओं के पुतले जलाते हैं.
We see this in the world too. They burn effigies of famous politicians.
कब जलाते
हैं? When do they burn them?
जब कोई ज्यादा दुखी करते हैं.
When someone makes them very sorrowful.
बहुत दुखी हो जाते हैं तो उसका पुतला बनाकर जलाते.
When they become really sorrowful, they make his effigy and burn it.
तो भारत में रावण का पुतला जलाते चले आते हैं कलयुग से.
So they have been burning the effigy of Ravan in Bharat from the Iron Age.
बाबा ने समझाया है और अब धर्म स्थापक इसको भी वर्षा नहीं देते.
बाबा हैज एक्सप्लेन्ड द अदर रिलीजियस फाउंडर्स डोंट गिव द इनहेरिटेंस टू एनी बडी.
वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं.
दे ओनली एस्टेब्लिश देयर रेस्पेक्टिव रिलीजन.
इसलिए उनको याद करते हैं.
दैट इज वाई पीपल रिमेम्बर देम.
बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बैठ प्रार्थना करने से वो कुछ भी नहीं देंगे.
एज फॉर द रेस्ट, क्राइस्ट और ब्रह्मा विष्णु शंकर won't give you anything even if you worship them.
क्राइस्ट की उपासना करो, ब्रह्मा की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, शंकर की पूजा करो, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं.
Whether you adore Christ, worship ब्रह्मा विष्णु और शंकर, you won't receive anything from them.
और वो तो 2500 वर्ष से करते ही चले आए.
And people have been doing this for 2500 years anyway.
विष्णु की मूर्तियाँ बनाई उनकी पूजा करते रहे, शंकर की मूर्तियाँ बनाई उनकी पूजा करते रहे, लेकिन सुख शांति तो नहीं मिली.
They made idols of Vishnu and worshipped him. They made idols of Shankar and worshipped him, but they certainly didn't receive happiness and peace.
सुख शांति मिलती ही तब है जब वो निराकार ज्योति सदाशिव इस सृष्टि पर आता है.
Happiness and peace are received only when that incorporeal light, Sadashiv, comes to this world. Sadashiv, meaning forever beneficial.
और ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा अपना कार्य शुरू करता है.
And starts his task through ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर.
तो उनको सन्मुख आना पड़ता है.
So he has to come face to face with the children.
मुख के सामने आना पड़े.
He has to come before their face.
हाजरा हुजूर होना पड़े.
He has to be present in front of them.
Present होना पड़े.
He has to be present.
कृष्ण में परमात्मा आते हैं. ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं मानते.
No one in the world believes this. The Supreme Soul comes in Krishna.
हाँ, ये कहते हैं कृष्ण भगवान था और वो अर्जुन के रथ में आया था.
Yes, they say there was God Krishna and he came into Arjun's chariot.
तो समझ लेते हैं कि वो कोई स्थूल रथ हुआ होगा.
So they think that it must have been some physical chariot.
वास्तव में शरीर को ही रथ कहा जाता है.
Actually, the body itself is called the chariot.
इस शरीर में इंद्रियों रूपी घोड़े हैं.
In this body, there are the indriya in the form of horses. Indriya, meaning sense organs and parts of the body used to perform actions.
इन इंद्रियों को मनुष्य कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है.
The human being isn't able to control these indriya.
जब इंद्रिया कंट्रोल से बाहर हो जाती है.
When the indriya are beyond control,
कोई के कंट्रोल में नहीं रहती, तब वो सुप्रीम सोल शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है.
When they don't remain under the control of anyone, then that supreme soul enters the chariot like body.
और इन इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करना सिखाता है राजयोग के द्वारा.
And he teaches you to control these horse-like indriya through राजयोग.
ऐसा ज्ञान देता है.
He imparts such knowledge.
बाप कहते हैं.
The father says,
मैं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए एक ही टाइम पर आता हूँ.
I come only once to give you children the inheritance.
शास्त्र में तो लिख दिया, सतयुग में आता है, नरसिंह का अवतार लेता है, हिरण्यकश्यप को मारता है.
It is written in the scriptures, he, that is God, comes in the golden age, in the incarnation of Narsingh and kills Hiranyakashyap. Narsingh, meaning a half man and half lion incarnation of Vishnu.
Treta mein Ram ban ke aata hai, Ravan ko maarta hai.
In the silver age, he comes as Ram and kills Ravan.
Dwapar mein Krishna Bhagwan ban ke aata hai. अब कौरवों का यादवों का संहार करता है.
इन द कॉपर एज ही कम्स एज गॉड कृष्णा एंड डिस्ट्रॉयज द कौरवाज एंड यादवाज. कौरवाज मीनिंग डिसेंडेंट्स ऑफ कुरु, यादवाज मीनिंग डिसेंडेंट्स ऑफ यदु.
अरे कृष्ण भगवान बनकर के द्वापर में आए और द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराने के बाद रिजल्ट निकले कलयुग की स्थापना.
अरे He comes as God Krishna in the Copper Age, and in the end of the Copper Age, after waging the Mahabharat war, the result that comes out is the establishment of the Iron Age.
तो भगवान का पापी कलयुग की स्थापना करने आता है क्या?
So, does God come to establish the sinful Iron Age?
भगवान पाप की स्थापना करने आएगा? नहीं.
Will God come to establish sin? No.
ये सब बातें मनुष्य गुरुओं ने लिखी हैं.
ह्यूमन गुरुज हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स.
बाप आकर के बताते हैं, मैं तो आता ही तब हूँ जब ये सृष्टि पूरी पतित हो जाती
है. द फादर कम्स एंड टेल्स अस, आई कम ओनली व्हेन दिस वर्ल्ड बिकम्स कम्प्लीटली इम्प्योर.
दुनिया में भी कोई बाप होते हैं, अपने बच्चों के लिए मकान तभी बनाते हैं जब पुराना मकान बहुत पुराना हो जाता है.
देर आर फादर्स इन द वर्ल्ड एज वेल. They build a house for their children only when the old house becomes very old.
जब तक रिपेयरिंग से काम चल सकता है तब तक उसमें रिपेयरिंग करते रहते.
They keep repairing it until the repairs work.
जब रिपेयरिंग से काम नहीं चलता तब पुराना मकान तोड़वा करके नया मकान बच्चों के लिए बनाते हैं.
When repairing it doesn't work, they destroy the old house and build a new one for the children.
तो ये भी सच रूपी मकान है.
सो दिस इज ऑल्सो अ हाउस लाइक वर्ल्ड.
ये सच रूपी मकान जब पुराना होना शुरू होता है द्वापर से,
when this house-like world starts becoming old from the copper age.
तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आकर के समय समय पर स्थान स्थान पर इसकी रिपेयरिंग का काम कराते हैं.
इब्राहिम बुद्धा क्राइस्ट गुरु नानक कम हैव इट रिपेयर्ड एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस.
अरब देश में इस्लाम धर्म स्थापन हुआ 2500 साल पहले.
The Islam was established in the Arab countries 2500 years ago.
European देशों में Christian धर्म स्थापन हुआ क्राइस्ट के द्वारा 2000 साल पहले.
The Christian religion was established by Christ in the European countries 2000 years ago.
चीन जापान आदि पूर्वी देशों में महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन हुआ.
In the eastern countries like China, Japan and so on, the Buddhist religion was established by Mahatma Buddha.
ऐसे ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक 1500 वर्षों के बाद एक एक धर्म पिताएं आते रहते हैं और सृष्टि की मरम्मत करते रहते हैं.
In this way, after every 1000 to 500 years, the religious fathers come one after the other and keep repairing the world.
अपने अपने प्रकार से धर्म की धारणाएं सिखाती रहती.
दे कीप टीचिंग रिलीजियस प्रिसेप्ट इन देयर ओन वे.
लेकिन नया मकान कोई नहीं बनाता.
हावेवर नो वन बिल्ड्स अ न्यू हाउस.
ये नया मकान बनाना और पुरानी सृष्टि को खलास कर देना ये एक परम पिता परमात्मा शिव का ही काम है.
बिल्डिंग अ न्यू हाउस एंड ब्रिंगिंग द ओल्ड वर्ल्ड टू एन एंड is the task of the Supreme Father, Supreme Soul, Shiva alone.
इसलिए सभी धर्म स्थापक आज भी उस परमपिता परमात्मा को याद करते.
That is why even today all the religious founders remember that Supreme Father, Supreme Soul.
तो उनको सन्मुख आना पड़े.
So he has to come face to face with the children.
जैसे धर्म पिताएं आते हैं अपनी धर्म की स्थापना करने तो अपने फॉलोअर्स के सामने आते हैं ना.
जस्ट लाइक वेन द रिलीजियस फादर्स कम टू एस्टेब्लिश देयर रिलीजन दे कम फेस टू फेस विद देयर फॉलोअर्स डोंट दे.
तो परमात्मा बाप भी जो निराकार ज्योति है.
सो द सुप्रीम सोल फादर ऑल्सो हु इज एन इनकॉर्पोरियल लाइट
जिस निराकार ज्योति का बड़ा लिंग बनाते हैं पूजा करते हैं.
दे मेक अ बिग लिंग as the form of that incorporeal light and worship it.
पूजा करने की सुविधा के लिए उस बिंदु का बड़ा आकार बनाते शिवलिंग.
They make a big form of that point, the Shivling, for the convenience of worship. Shivling, meaning an oblong stone representing Shiv, worshipped in all India.
इतना बड़ा है नहीं.
He is not so big.
हमारी आत्मा की तरह वो भी ज्योति बिंदु है. वो भी सितारा है.
He is also a point of light like our soul. He is also a star.
जैसे हम आत्मा इस धरती के चैतन्य सितारे हैं वैसे वो परमात्मा भी सितारा है.
Just like we souls are the living stars of this earth, that supreme soul is also a star.
तो वो सितारा बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो वो दाता बन करके आता है.
So when that father the star comes to this world, he comes as the giver.
हम बच्चों से लेता कुछ भी नहीं है.
He doesn't take anything from us children.
बाप कहते हैं मैं ही तुमको वर्षा देने वाला हूँ.
The father says, I am the one who gives you the inheritance.
और बाबा दो को कहा जाता है.
And two souls are called Baba.
एक होता है शरीर का बाबा और दूसरा होता है आत्माओं का बाबा.
वन इज द बाबा ऑफ द बॉडी एंड द अदर इज द बाबा ऑफ द सोल्स.
और कोई बाबा हो नहीं सकता.
देर कांट बी एनी अदर बाबा.
तुमको इस बाबा से अर्थात प्रजापिता से वर्षा मिल नहीं सकता.
यू कांट रिसीव द इनहेरिटेंस फ्रॉम दिस बाबा मीनिंग फ्रॉम प्रजापिता.
जो शरीरों का बाप है
द वन हु इज द फादर ऑफ द बॉडीज.
जो भी मनुष्य शक्ति की 500 करोड़ है मनुष्य आत्माएं हैं मनुष्य हैं उन मनुष्यों को जन्म देने वाला एक बीज है Prajapita.
There is one seed, Prajapita, who gives birth to all the 5 billion human souls, the human beings of the world.
Uske tumko varsha nahi mil sakta.
You can't receive the inheritance from him.
Krishna se bhi varsha nahi mil sakta, Buddha se bhi varsha nahi mil sakta.
The inheritance can't be received from Christ. The inheritance can't be received from Buddha either.
Varsha tabhi hi milta hai jab wo supreme soul Prajapita mein pravesh karta hai.
The inheritance is received only when that supreme soul enters Prajapita.
So sabit hua ek Shiv Baba se hi varsha milta hai.
So it is proved that the inheritance is received only from the one Shiv Baba.
Us Shiva ki bindi ka naam hi Shiva hai.
The name of just that point is Shiv.
Wo jyoti bindu jab sakar sharir mein pravesh karta hai to Shiv Baba kaha jata hai.
When that point of light enters the physical body, it is said Shiv Baba.
Nahi to wo bindu bindu atma ka sirf bhag hai.
Otherwise, he is only the father of the point souls.
Dusra koi sambandh nahi banta.
No other relationship is formed with him.
Sambandh tab bante hain jab wo sakar mein aata
hai. Other relationships are formed with him when he comes in the corporeal form.
Gaate hain.
They sing.
Tumeva mata cha pita tumeva. Tumeva bandhu cha sakha tumeva. Tumeva sarvam mama deva deva.
Meaning, you are the mother, the father, the brother, the friend. You alone are everything for me. You alone are my greatest deity.
Sab prakar ke sambandh us Paramatma ke sath jodte.
All kinds of relationships are formed with that supreme soul.
To practical mein aaya hua hoga tabhi to jodenge.
So they will be formed only when he has come in practice.
Koi sirf kehne ki baatein thodi hai.
It isn't only a saying.
Brahma, Vishnu, Shankar bhi usse varsha lete.
Brahma, Vishnu and Shankar also take the inheritance from him.
Isse supreme soul Shiv Baba se.
From whom? From the supreme soul father Shiv.
Wo data hai.
He is the giver.
Sarva ka sadgati data, sarva ka mukti jivan mukti data.
He is the giver of the true liberation to all. He is the giver of liberation and liberation in life to all.
Isliye pehle pehle koi ko bhi baap ka parichay dena chahiye.
That is why you should introduce to anyone the father first.
Uske sath atma ka parichay dena hi pade.
Along with this, you will have to introduce the soul anyway.
Baap hai to baap ke bacche bhi honge.
If there is the father, there will be the father's children too.
वो बाप है, हम बिंदु बिंदु आत्माओं का और हम बिंदु बिंदु आत्मा उसके बच्चे हैं.
He is the father of us point souls and we point souls are his children.
तो कोई को भी ज्ञान सुनाना शुरू करना है तो सबसे पहले क्या बताना है.
So when you start narrating knowledge to anyone, what do you have to tell him first of all?
कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम ये विनाशी शरीर नहीं हो.
You are a point of light soul. You aren't this perishable body.
ये शरीर तो आज है और कल खलास हो
जाएगा. This body exists today and tomorrow it will be destroyed.
तुम ज्योति बिंदु आत्मा फिर भी बनी रहेंगे.
Yet you, a point of light soul, will exist.
तो तुम ज्योति बिंदु जो आत्मा हो, अपने स्वरूप को जानो और अपने बाप को पहचानो.
So you, a point of light soul, realize your form and recognize your father.
जब अपने बाप की पहचान हो जाएगी कि वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है.
When you recognize your father, when you recognize that he is the supreme soul, a point of light,
जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में बनाई गई थी.
Whose memorial was made in the Somnath temple, a temple dedicated to Shiv in Gujarat in India.
सोमनाथ मंदिर में चारों तरफ की दीवार में चुंबक जड़ा हुआ था.
इन द सोमनाथ टेम्पल देर वर मैग्नेट्स इन द सराउंडिंग वॉल्स.
और बीच में निराधार शिवलिंग लटक रहा था.
एंड इन द मिडल अ शिवलिंग वॉज हैंगिंग विदाउट एनी सपोर्ट.
उस लिंग में हीरा जड़ा हुआ था.
अ डायमंड वॉज इम्बेडेड इन दैट लिंग.
लाल पत्थर का लोहे से मिक्स हुए पत्थर का लिंग था और बीच में हीरा था।
द लिंग वॉज मेड ऑफ रेड स्टोन ऑफ स्टोन मिक्सड विथ आयन एंड देर वॉज अ डायमंड इन द सेंटर।
तो वो लिंग किसकी यादगार हुई?
सो हुज मेमोरियल इज दैट लिंग?
और वो हीरा किसकी यादगार हुई?
एंड हुज मेमोरियल इज दैट डायमंड?
हीरा है शिव ज्योति बिंदु की यादगार।
द डायमंड इज द मेमोरियल ऑफ शिव द पॉइंट ऑफ लाइट।
और जो लिंग लाल पत्थर था वो शरीरधारी की यादगार है जो ज्ञान का सागर बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है।
एंड द लिंग द रेड स्टोन इज द मेमोरियल ऑफ द बॉडीली बींग हु इज रिवील्ड इन द वर्ल्ड एज द ओशन ऑफ नॉलेज।
तो बाप कहते हैं?
सो द फादर सेज
मुझे हीरे को समझो।
रिकॉग्नाइज मी द डायमंड।
मैं जब हीरा आकर के हीरो पाठधारी में प्रवेश करता हूँ तभी संसार का कल्याण होता है।
वेन आई द डायमंड कम एंड एंटर द हीरो एक्टर ओनली देन इज दिस वर्ल्ड बेनिफिटेड।
इसलिए पहले पहले कोई को बाप का परिचय देना पड़े।
दैट इज वाई यू हैव टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस द फादर टू समवन।
यू तो कोई बड़े बुजुर्ग को भी बाबा व पिताजी कह देते।
इन अ वे दे कॉल इवन एन ओल्ड पर्सन बाबा और फादर।
परंतु वास्तव में बाबा कोई नहीं।
बट इन रियलिटी नन ऑफ देम इज बाबा।
बाप एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक होता है।
वन फादर इज लौकिक एंड द अदर इज पारलौकिक।
कहेंगे ये ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है क्योंकि ये भी एडॉप्ट करते हैं।
इट विल बी सेड दैट दिस ब्रह्मा इज ऑल्सो अ बॉडीली फादर बिकॉज ही ऑल्सो अडॉप्ट अस।
तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो परंतु वर्षा उनसे मिलता है।
ऑल्दो यू कॉल ब्रह्मा बाबा यू रिसीव द इनहेरिटेंस फ्रॉम दैट वन।
ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता उनसे मिलता है।
You don't receive the inheritance from Brahma. You receive it from that one.
उनसे माना?
That one means who?
जो संसार में जो रूप परमात्मा बाप के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है उनसे ही वर्षा मिलता है।
The inheritance is received only from the one who is going to be revealed in the world in the form of the Supreme Soul Father.
और वो कौन सा वर्षा है?
And what kind of an inheritance is it?
गति संगति का वर्षा है।
इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ लिबरेशन एंड ट्रू लिबरेशन।
जो इस समय ही तुम बच्चों को देते हैं माना कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में तुमको वर्षा मिलता है।
दैट इज गिवन टू यू चिल्ड्रन ओनली एट दिस टाइम मीनिंग यू रिसीव इट एट द एंड ऑफ द आयरन एज एंड द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज।
और जब वर्षा मिलता है तो उसकी निशानी है उसकी पहचान है सब दुखों के बंधन से छूट जाते।
द इंडिकेशन द साइन ऑफ रिसीविंग द इनहेरिटेंस इज दैट यू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस ऑफ सोरो।
दुर्गति से छूट जाते हैं।
यू बिकम फ्री फ्रॉम डिग्रेडेशन
अर्थात जीवन जो बंधन में महसूस करते हैं उससे छुटकारा मिल जाता है।
मीनिंग यू रिसीव लिबरेशन फ्रॉम द लाइफ यू एक्सपीरियंस एज बॉन्डेज।
इस समय भारतवासी और सारी दुनिया सब रावण की बंधन में।
द रेजिडेंट्स ऑफ भारत एंड द एंटायर वर्ल्ड इन जनरल आर इन द बॉन्डेज ऑफ रावण एट दिस टाइम।
रावण ने सबको बांध रखा।
रावण हैज बाउंड एवरीवन।
जैसे सब जेल में पड़े हुए।
इट इज एज इफ ऑल आर इन जेल।
आत्माएं जो पहले पहले आती है वो पहले जीवन मुक्ति फिर जीवन बंधन में चली जाती है।
द सोल्स दैट कम फर्स्ट अचीव लिबरेशन इन लाइफ फर्स्ट एंड देन आर बाउंड इन लाइफ।
कहाँ से आती है?
वेयर डू दे कम फ्रॉम?
कहीं से तो आती होंगी नहीं तो इस दुनिया की जनसंख्या क्यों बढ़ती जाती है?
दे विल बी कमिंग फ्रॉम समवेयर अदरवाइज व्हाई डज द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड इंक्रीज।
मनुष्यों की जनसंख्या नहीं कीट पशु पक्षी पतंगे सबकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।
Not only the population of human beings, but the population of insects, animals, birds, moths, and everything is increasing.
तो जरूर ये आत्माएं कहीं इस लोक से बाहर कोई दूसरा लोक है जहाँ से आती।
So, certainly these souls come from some other world, that is beyond this world.
उस लोक को अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम अबोड, सोल वर्ल्ड.
The English call it the supreme abode, the soul world.
मुसलमान लोग कहते हैं अर्श, सातवां आसमान.
The Muslims call it अर्श, सातवां आसमान, meaning seventh sky.
पहले कहते थे खुद अर्श में रहता है, अर्श में नहीं रहता.
Earlier they used to say God lives in अर्श, not on this earth, फर्श.
अभी तो मुसलमान भी कहने लगे खुदा जर्रे जर्रे में.
Now the Muslims have also started saying God is in every particle.
जब उसको हर जगह ढूंढा कहीं मिला नहीं तो कहने लगे वो सब में हर जगह व्यापक.
When they searched him in all places but didn't find him anywhere, they started saying he is omnipresent, he is present everywhere.
तो बाप कहते हैं कि ये सब आत्मा है परमधाम से आती
है. So the father says all these souls come from the supreme abode.
सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी परे एक ऐसा धाम है जिसका गीता में वर्णन है.
There is such an abode beyond the world of the sun, moon and stars which is described in the Gita.
एक श्लोक आया है ना वहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश पहुँचता है.
There is a verse, shlok in the Gita, which means the light of the sun, the moon and stars doesn't reach there.
जहाँ जाकर के आत्माएं वापस इस दुख की दुनिया में नहीं लौटती वो मेरा परम धाम.
The souls go there and don't come back into this world of sorrow. That place is my supreme abode.
उस परम धाम की तुम बिंदु बिंदु आत्माएं भी रहने वाली हो और मैं सुप्रीम सोल बाप भी वहाँ का रहने वाला हूँ.
यू पॉइंट सोल्स आर द रेजिडेंट्स ऑफ दैट सुप्रीम अबोर्ड एंड आई द सुप्रीम सोल फादर एम ऑल्सो द रेजिडेंट ऑफ दैट प्लेस.
तुम इस सृष्टि पर आते हो तो थोड़ा थोड़ा करके आते.
वेन यू कम टू दिस वर्ल्ड यू कम इन स्मॉल नंबर्स.
सत्युग में थोड़ी आत्माएं उतरती.
फ्यू सोल्स डिसेंड इन द गोल्डन एज.
त्रेता में और ज्यादा उतरती.
Some more souls descend in the silver age.
द्वापर में फिर और ज्यादा उतरती हैं.
Even more souls descend in the copper age.
और कलयुग के अंत तक सारी आत्माएं मनुष्य सृष्टि की नीचे उतर आती.
And until the end of the iron age, all the souls of the human world come down.
जब सबके उतरने का टाइम होता है तब वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है.
When it is the time for everyone to descend, that supreme soul comes to this world.
और आकर के सब आत्माओं को अपने स्वरूप का परिचय देता है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, स्टार हो, तुम धरती के सितारे हो.
एंड गिव्स ऑल द सोल्स द इंट्रोडक्शन ऑफ देयर फॉर्म सेइंग यू आर पॉइंट ऑफ लाइट सोल्स स्टार्स यू आर द स्टार्स ऑफ द अर्थ.
वो सितारे तो आसमान में जो चमकते हैं वो जड़ है और तुम चैतन्य सितारे हो.
Those stars which shine in the sky are non-living, and you are living stars.
चैतन्य कहा जाता है चलते फिरते बोलते को.
The one who walks, moves around and speaks is called living.
तो तुम चलते फिरते बोलते सितारे हो.
So you are the stars that walk, move around and speak.
ये परिचय दे करके आत्माओं को स्वरूप में स्थिर कराता है.
After giving them this introduction, he makes the souls stabilize in that form.
कि तुम अब ये देह भान छोड़ दो.
Saying, renounce this body consciousness now.
देह को याद करना माना मिट्टी को याद करना.
Remembering the body means remembering soil.
मिट्टी को और पत्थर को याद करते करते सारी बुद्धि पत्थर बन गई.
By remembering the soil and stones, their intellect has completely become like a stone.
यहाँ तक पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं कि जिस डाली पर बैठते हैं वो डाली ही काट रहे हैं.
दे हैव बिकम द वंस विथ सच अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट दैट दे आर कटिंग द वेरी ब्रांच ऑन विच दे सिट.
दुनिया में एटम बम बनाए रखे हैं.
एटम बम्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द वर्ल्ड.
इस दुनिया में रहना भी है एटम बम बना करके उस दुनिया को खलास करना चाहते.
they want to live in this world as well as finish it by preparing atom bombs. Their intellect has become so stone-like.
ऐसे पत्थर बुद्धियों को परमात्मा बाप ज्ञान दे करके फिर पारस बुद्धि बनाए।
The Supreme Soul Father is giving the knowledge to the ones with such a stone-like intellect and making them into the ones with a Paras-like intellect again. Paras, meaning a mythical stone which is said to transform into gold anything that touches it. Here it refers to the souls who have an intellect such that just by coming in their company, other souls are transformed.
So, manushya ko devata banana. Ye paramatma baap ka kaam hai.
So, to make human beings into deities is the task of the Supreme Soul Father.
Lekin jo is srishti par aatmaye pehle satyug mein aati hai, wo shesh aatmaye hoti
hai. But the souls who come to this world first of all in the golden age are elevated souls.
सत्युग त्रेता में सिर्फ देव आत्मा ही सृष्टि पर आती है।
Only the deity souls come to this world in the golden and silver ages.
उस समय भारत ही सिर्फ होता है धर्मखंड।
Only the religious land of Bharat exists at that time.
दूसरे धर्मखंड नहीं होते।
There are no other religious lands.
ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अरब देश, दूसरे दूसरे जो धर्मखंडों के देश हैं। वो 2500 साल पहले इस सृष्टि पर नहीं थे।
दिस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अरब कंट्रीज, द कंट्रीज ऑफ अदर रिलीजियस लैंड्स डिडंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड 2500 इयर्स अगो।
सब समुद्र में डूबे हुए थे।
ऑल ऑफ देम वर सबमर्ज्ड इन द ओशन।
अभी भी ऐसा ही होगा।
द सेम विल हैपन नाउ एज वेल।
ये एटम बम जब फटेंगे तो पृथ्वी का बैलेंस टूट जाएगा।
When this atom bombs explode, the earth will lose its balance.
बड़े बड़े भूकंप आएंगे।
Big earthquakes will occur.
और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो सैकड़ों मील ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के जमे हुए, वो पहाड़ पिघल जाएंगे एटम बमों की गर्मी से।
And the 100 miles high mountains of ice in the North Pole and South Pole will melt because of the heat of the atom bombs.
और जब वो पिघलेंगे तो दरार आने से वो सारे समुद्र में आ जाएंगे। और समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा।
When they melt, then due to the crack, they will flow into the ocean and the level of the ocean will rise.
जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो ये अफ्रीका, ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अरब देश जो पहले थे ही नहीं वो सब समुद्र में समा जाएंगे।
When the level of the ocean rises, this Africa, America, Australia, Arab countries that didn't exist before at all those will be submerged in the ocean.
अब सिर्फ भारत खंड रह जाएगा जहाँ भगवान आते।
And only the land of Bharat where God comes will remain.
कोई तो कारण होगा।
There must be some reason.
भारत में ही भगवान क्यों आते हैं?
Why does God come only in Bharat?
जरूर है, भारत देवभूमि थी।
Certainly, Bharat was the land of deities.
देवताओं का देश है।
It is the country of the deities.
देने वालों का देश है।
It is the country of the ones who give.
ये माता पिता का देश कहा जाता है।
This country is called the country of the mother and father.
माता पिता बच्चों को देते हैं, लेने की इच्छा नहीं करते।
The mother and father give something to their children. They don't desire to take anything from them.
इस भारत देश में भगवान आया हुआ है।
So, God has come to this country of Bharat.
वो आकर के रास्ता बता रहा है।
Having come, he is showing the way.
इस दुनिया के विनाश होने से पहले अपना वर्षा मुझे बाप से ले लो।
टेक योर इनहेरिटेंस फ्रॉम मी द फादर बिफोर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड टेक्स प्लेस।
जो लेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वो फायदे में।
द वंस हु टेक द इनहेरिटेंस, द वंस हु मेक पुरुषार्थ विल बी बेनिफिटेड।
एक जन्म के फायदे में नहीं, अनेक जन्मों का फायदा हो जाएगा।
दे विल बी बेनिफिटेड नॉट जस्ट फॉर वन बर्थ बट फॉर मेनी बर्थ्स।
जो अनेक जन्मों का फायदा होता हो तो एक जन्म की जो थोड़ी सी प्राप्ति हो रही है उसको त्याग करने में क्या बड़ी बात है।
इफ देर इज बेनिफिट फॉर मेनी बर्थ्स व्हाट इज द डिफिकल्टी टू रिनाउंस द फ्यू अटेनमेंट्स दैट यू ऑब्टेन इन दिस वन बर्थ।
इस जीवन का इतना लंबा समय तो बीत गया।
अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस लाइफ दैट इज बर्थ हैज पास्ड।
अब थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है।
लिटिल टाइम इज लेफ्ट नाउ।
दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो 20-20 मेगावाट की बम्बियां छूटी थी।
When the Second World War took place, they exploded small bombs of 20 megawatts each.
दुनिया में हाहाकार हो गया।
There were cries of despair in the world.
अभी तो हजारों हजार मेगावाट के एटम बम तैयार हो चुके हैं।
एटम बॉम्ब्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स हैव बीन मेड नाउ।
कोई बड़ी बात नहीं है, कब विश्व युद्ध शुरू हो जाए।
इट इज नॉट अ बिग इश्यू, द वर्ल्ड वॉर मे स्टार्ट एट एनी टाइम।
और अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो सारे ही देश ऐसे युद्ध में कूद पड़ेंगे।
एंड इफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर टेक्स प्लेस ऑल द कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन इट।
अगर तो खुदान खास्ता तृतीय विश्व युद्ध में कुछ शक्ति रह भी गई तो चौथा विश्व युद्ध होने में देर नहीं लगी।
इफ बाय चांस द वर्ल्ड सर्वाइव्स टू सम एक्सटेंट इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर इट वोंट टेक लॉन्ग फॉर द फोर्थ वर्ल्ड वॉर टू टेक प्लेस।
जिसमें ये सारी एटमिक दुनिया खलास हो जाएगी।
इन विच दिस एंटायर एटॉमिक वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड।
अभी टाइम ज्यादा नहीं है।
देयर इजंट मच टाइम लेफ्ट नाउ।
अभी ईश्वर का कार्य भी पूरा हो चुका।
ऑल्सो गॉड्स टास्क इज कम्प्लीट नाउ।
जो ज्ञान देना था वो सारा ज्ञान दे दिया।
ही हैज गिवन द एंटायर नॉलेज दैट ही हैड टू गिव।
अब समझाने के लिए परमात्मा के पास कुछ रहा नहीं।
द सुप्रीम सोल हैज नथिंग एल्स टू एक्सप्लेन नाउ।
तो अभी समय है, शांति के टाइम में अच्छी पढ़ाई होती है।
सो देर इज सम टाइम नाउ, स्टडीज गो वेल एट द टाइम ऑफ पीस।
जब जिंदगी में धंधा दोरी लग जाते हैं, शादी वादी हो जाती है तो पढ़ाई नहीं होती।
लेटर वेन दे बिकम एंगेज्ड इन बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन इन देयर लाइफ, वेन दे आर मैरिड दे आरंट एबल टू स्टडी।
ये भी परमात्मा बाप पढ़ाया है।
सिमिलरली हियर द सुप्रीम सोल फादर इज टीचिंग।
अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए।
यू शुड कम्प्लीट योर स्टडीज।
अनेक जन्मों का सुख शांति का वर्षा जल्दी से ले लेना चाहिए।
यू शुड टेक द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस फॉर मेनी बर्थ्स क्विकली।
अच्छा ओम शांति।
अच्छा ओम शांति।